نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا
شرکت کی ان کا تاثر بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے ان کا تاثر. کے بعد فائدہ اس سے ہوتا ہے, ایمان میں تازگی محسوس ہوتی ہے, فائدہ محسوس ہوتا ہے, جذبات بنتے ہیں. بہت سے لوگ جمع کیے گئے, طبیعت کے اندر جو اجتماع ہوتا ہے, یہ اجتماع بڑا اجتماع نہیں بلکہ محنت کا ہے, عنوان ہوتا ہے, ٹارگیٹ ہوتا ہے, تو اس کو سامنے رکھے, محنت کرے اس کے پہلے اور اس کے بعد فائدہ بھی ہوتا ہے اس سے. اس اجتماع میں بھی جب اجتماع کو فرض کیا جائے محنت کرو گے تو اس سے پہلے محنت کی تو اس میں 15 جماعتیں نکل رہی ہیں, اجتماع سے 25 کے قریب جماعتیں نکل رہی ہیں, تو 35 کے قریب جماعتیں نکل رہی ہیں. ہر جماعت میں 5-7 آدمی ہوتے ہیں, اتنے لوگوں کا ایک خاص مدت کے لیے جماعت میں جانا, مسجد والے ماحول میں رہنا, ان کی مشق کرنا, سنتوں کی مشق کرنا, دین کی باتوں میں مذاکرہ کرنا, یہ انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے اور پرسن کو ڈیولپ کرتا ہے. اندر لازمی طور پر اندر سے آدمی جذبات لیتا ہے, خواہش لیتا ہے دین پر عمل کرنے کی, محبت پیدا ہوتی ہے دین سے, دین کی باتوں سے عظمت آتی ہے اللہ کے دین. اگر اس طرح کے ماحول کی شدید ضرورت ہے میرے, مجھے بھی, آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو. اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ دین کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بنیادی طور پر آدمی میں موجود ہوں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ بنیادیں مضبوط ہو جائیں تو جو تقاضے اور جو ڈیمانڈ آئیں گے دین کے سلسلے میں وہ ان کو دے گا. جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوگی ڈیمانڈ کو وہ نہیں قبول کرے. یہ بالکل لاجیکلی بات ہے. دین کے ڈیمانڈ بہت سے ہیں, ذمہ داریاں بہت ہیں, ہر مسلمان جانتا ہے, لیکن ہم لیتے اس لیے نہیں کہ بنیادیں مضبوط نہیں ہیں. مکان کے جو پلر ہیں اور جو اس کی بنیادیں ہیں وہ تو ہو نہیں مضبوط, اور اس کے اوپر ڈیمانڈ آپ رکھتے ہیں کہ اس میں 3 بیڈ روم چاہیے, اس میں 2 باتھ روم چاہیے, اس میں ڈائننگ ہال بھی بڑا ہو, اس میں لیونگ روم بھی ہو, اور یہ سنگل نہ ہو بلکہ ڈبل ہو, بلکہ یہ 3 منزلہ ہو, یہ 4 منزلہ ہو, 5 منزلہ ہو, کافی ڈالو گے بھائی, اس کی جانداری نہیں ہے, اس میں وہ تو بیٹھ جائے گا نہیں, نہ اپنے کام کا ہوگا نہ دوسرے کے کام کا, بلکہ دوسروں کا بھی نقصان کر دے گا. جیسے مکان کے ستون ہوتے ہیں ان کی دیر ہوتی ہے کہ انجینئر پہلے سے پلان کرتا ہے کہ آئے اس کو جانا کتنے اوپر ہے, اس کے ڈیمانڈ کیا ہیں, سامنے والا کیا بول رہا ہے, اس کے اعتبار سے پیسے بھی دیتا ہے, اسی اعتبار سے اس کو کلیئر بھی بناتا ہے. مثلا جامع مسجد کی توسیع کے سلسلے میں بہت فکر کر رہے ہیں جامع مسجد والے, چورا والے آرام سے اس کے اوپر بھی جا سکتے ہیں بلکہ اس کے نیچے بھی جا سکتے ہیں. 30 فٹ سے زیادہ تو ہمیں اس کا پلر ہے نیچے, یا تو کیسے بتایا جیسے جاتی ہیں تو اللہ کا لگاؤ کوئی چیز, آپ اس کا بیسمنٹ بھی بنا لو, اس کے اوپر بھی چلے گا. جیسی بنیاد ہوتی ہے ویسے تقاضے لیے جا سکتے ہیں, ڈیمانڈ پورے کیے جا سکتے ہیں. مسجدیں بنانا یہ مسلمانوں کے تقاضے ہیں, مدرسے اسکول ہونا چاہے وہ دنیوی تعلیم کے اسکول ہوں خالص یا دینی تعلیم کے, دونوں میں دین ہونا, ہماری دنیا بھی دین ہی ہے, بچت میں بھی وہ دینی احکام کے تابع ہو, تو مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کا دن کی جو دینی دنیاوی تعلیم ہے وہ دینی انوائرمنٹ میں ہو, دین کی پریکٹس کے ساتھ ہو. تو صحیح اسکول رن کرنا, خالص دینی مدد سے ہونا, ان کو قرآن تاکید کرنے والے پیدا ہوں, محدث پیدا ہوں, مفسر پیدا ہوں, حدیث و تفسیر سے واقف لوگ پیدا ہوں تاکہ صحیح رہے, وہ قرآن آنے کے لیے سکے آدمی کو. یہ تو حال ہے, مسلمانوں میں غریب ہیں, پریشان حال ہے, ان کی مدد کرنا مسلمانوں کے ذمے ہے. مسلمانوں میں دنیا کے اندر حوادثات پیش آتے رہتے ہیں, کہیں طوفان آ گیا, کہیں زلزلہ آ گیا, کہیں کچھ ہو گیا, ان کو ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تقاضے ہوتے ہیں, حلال کمانے اور اس کے نفسوں کے تقاضے ہوتے ہیں, تو وہ حلال چیز आदमी को अवेलेबल होनी चाहिए, हलाल रोटियाँ अवेलेबल होनी चाहिए, हलाल खाना अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके वास्ते जाहिर है कि अगर आप ये चाहेंगे सही दुकानें खुलें, सही होटल खुलें, सही चीज बाजार में आए, ये तकाजा है मुसलमान का, सही खर्च करना ये तकाजा है। इनको तकाजे चाहिए कि जो जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, इंडिविजुअली हों या कलेक्टिवली हों, और ज्यादातर कलेक्टिवली को तकाजे रहते हैं बाहर के समझ में, बाहर की हिम्मत की, तो ये तकाजे हैं। और इन सबको पूरा करना मुसलमानों के दिल में होता है, छोटा हो या बड़ा हो। अचानक अगर किसी मुसलमान का इंतकाल हो गया, उसके कफन दफन और उसके खबर के लिए जमीन नहीं है, और दूसरे मुसलमानों ने इस तकाजे को नहीं लिया, मतलब क्या है, सारे मुसलमान गुनहगार होते हो, ये डिमांड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके आदमी उसके पास नहीं है पैसे, उसका कोई वारिस नहीं है, फिर आप कौन वारिस, मुसलमान वारिस है, दूसरे से उनको करना पड़ेगा। नमाज़े जनाज़ा क्या है, फर्ज़ किफ़ाया है, मतलब क्या है इस बात का, ये तकाजा है उम्मत पर। अगर कोई भी नहीं पड़ेगा, सारी उम्मत गुनहगार होगी, उससे नमाज़े जनाज़ा न होने, सारी बच्चे के लोग गुनहगार होंगे, जिनको तकाजे कहते हैं। तो बहुत होते हैं हमारे घरेलू जिंदगी में, हमारी फैमिली के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, सब में हमारे बहुत से तकाजे हैं, इस्लामी एतबार से अब जरूरी है। एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा यह है कि इस तकाजे को पूरा करने वाला वो पर्सन कैसा है। तो पर्सन को इसके लिए तैयार करना ये बुनियाद कहलाती है। तो फर्ज जो है आदमी उसके अंदर कुछ बेसिक और बुनियादी बातें अगर होंगी तो कयामत तक मुसलमान दुनिया में होगा और कोई तकाजा उसकी मौजूदगी में दीन का आएगा वो उसको ले लेगा। बाकी तो मजबूरी मुसलमान का बहन फिर होगा कि भाई ये काम कर लेना चाहिए और ये वो काम कर लेगा। नमाजें उसी का हिस्सा है, तकाजों का रोड़े उसी का हिस्सा है, जकात उसी का हिस्सा है, हज उसी का हिस्सा है, जो इबादात में वो भी उसमें शामिल है, और जो माशरती और मामलाती मसाइल है, डीवी के खरीद व फरोख की, वो भी उसी में शामिल है, अखलाकियात वो भी उसी में शामिल है, माशरत वो भी उसी में शामिल है। लेकिन ये एक आदमी के अंदर कुछ चीज होना पड़ता है, तब जाके वो लेगा इस बात को, वरना आप उठाते रहिए कौन सुनता है कुरान दुर्वेश, वो भी मधुबान दुर्वेश, जंगल में मोरना था कितने देखा, सुनते ही कोई अपनी अपनी जगह पर चलते रहते, उसके लिए एक मेहनत है। इसीलिए आम मेहनतों में और इस मेहनत में एक फर्क है। बहुत से काम मुसलमान कर रहे हैं, करना चाहिए, करते हैं, वो भी जरूरी होते हैं, लेकिन उनमें और ये जो इनकी मेहनत दावत के नाम पर होती है उसमें एक जो बुनियादी फर्क है वो मुझे आपको समझना चाहिए, बाबा उसे लेना चाहिए उस बात को। दूसरे काम गैर जरूरी है ऐसी बात नहीं है, दूसरे काम दीन के लिए ऐसी बात नहीं होती, होते हैं वो भी दीन, वो भी जरूरी होते हैं। मगर इसमें एक बात यह है कि एक आदमी को ईमान की बुनियाद पर, इखलास की बुनियाद पर, तालीम और तालीम की बुनियाद पर, इबादत की बुनियाद पर, दीन के लिए मेहनत करने की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर थोड़ा सा मजबूत करना। ईमान मजबूत है तो सब कुछ जमीन है, तो कुछ भी समझो ईमान के साथ क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। ईमान का एक लेवल होता है जिससे ईमान के तकाजे पूरे होते हैं, जैसे बिजली का और करंट का एक लेवल होता है जिससे सारे तकाजे पूरे होते हैं। यहाँ पे आपने नहीं देखा होगा लेकिन इंडिया पाकिस्तान में बारह में जाएगा क्या होगा कि वोल्टेज इतना कम होता है बाद में दबा कि आप जाके बिजली के डिपार्टमेंट वालों को ये भी कह सकते हैं आपको बिजली नहीं आ रही, वो कहेंगे आप लेकिन ना तो आपका खाना पकड़ा उसने, हाँ वोल्टेज ही नहीं, ना आप किताब पढ़ सकते, ना बच्चे होमवर्क कर सकते, वोल्टेज ही नहीं उसने, कपड़े इस तरीके के बैठे हैं तो गर्मी नहीं हो रही, वो वोल्टेज ही नहीं हो रही, फिर इसमें चीजें रखी हुई है सारी खराब हो रही, वैसे लाइट जल रही, वोल्टेज ही नहीं हो रही। एक लेवल है उसका कि जिससे वो चीजें पूरी हों, ऐसे ही ईमान का भी एक लेवल होता है उसकी कैफियत का, वो अगर होगा ना तो फिर नमाज के लिए बोलना नहीं पड़ेगा मुसलमान को, वो खड़ा कर देगा, वो ईमान उसको मजबूत कर देगा नमाज पर, ऐसा हो सकता है नमाज नहीं बोल सकता मुसलमान भी है नमाज तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बात रहने में आ जाती है जो कि आना चाहिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कांसेप्ट दिया है, मुसलमान भी है नमाज पढ़े ये नहीं हो सकता, मगर आप मुसलमान को कैसे समझाएंगे ये बात, ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس اللہ رسول کی بات کر آخرت کا پہلا دھیان ہی نہیں ہے ان کو, تو یہ بات کیوں تفصیل کرو گے اتنے کے بغیر نماز کے ایمان کا کوئی کانسیپٹ اثر ہے ہی نہیں. بس پکے نمازی بھی ہے اور نماز پکے مسلمان بھی ہے اور نمازی بھی ہے نہیں, یہ بات ایمان میں دین میں یہ بات ہے نہیں, لیکن کیا کریے مسلمان وہ بات آ جانا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہی ہے, نماز ہے تو ان نے ڈیوائڈ کیا ان دونوں کو, نماز نہیں ہے تو ان نے ڈیوائڈ نہیں کیا, یہ بتا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کتنا بڑا جلوا ہے تو دیکھنے کو پتلے کی زبان میں لائے تو بہت بڑی بات ہو جائے, سر کی طرح سے انسان کے جسم میں جیسے ہیڈ ہے جیسے سر ہے ایسی نماز ہے اسلام میں, مگر یہ مسلمان کو کیوں کر بتایا جائے 97% مسلم نہیں پڑھتا مسلمان بھی, اب ایسے مسلم کی رائے میں کیا کام بنے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مسلمان رہے آلات میں آئیں گے, صحابہ نے پوچھا کہ ہم لوگ اس وقت بہت کم ہوں گے, فرمایا کہ نہیں تم کم نہیں ہوں گے, بھیڑ نماری بہت ہوگی لیکن کچرا ہوں گے گاربیج کسی کام کے نہیں, نہ اپنے کام کے نہ دوسروں کے کام, جب دوسروں کے کام میں آتے اپنے پہنچے اپنے من میں ڈوب کر پا جا بڑا رہے زندگی تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن, نہ اپنے کام کے نہ کسی اور کے کام کے نہ عمر کے کام نہ دنیا کے کام کے نہ آخرت کے کام کے بھی طرف اپنے آخرت کی اتنی سوال نہیں ہوتی دنیا چاہے گی کر دیں گی, اس لیے وہ چیز دی جائے مسلمان کو جس سے اس کے ایمان کے اندر قوت آئے کیفیت پیدا ہو نور پیدا ہو ایک روشنی اور ایک انجرا ہے جس کی وجہ سے آدمی یہ محسوس کرے کہ بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں اور ہمارے سے مغلوب ہونے کے ان کے محسوس اور مرغوب ہونے کے وہ میرے رب ہیں, ان کے رائٹس ہیں کچھ ان کا حق بنتا ہے کچھ مجھ پر, وہ ایک ثواب کا ایک ایک نیکی نہ دے دے نماز پڑھ کر دے بچا رہا ہے ان کا حق ہے انہوں نے یہ کیا ہے بابا زندگی ان سے ہے آنکھیں ان سے ہیں کان ان سے ہیں زبان کی قوت اس میں ہے ہاتھوں اور پیروں کا طاقت ان سے ہے, اب تک جو کھلایا انہوں نے کھلایا پیدا ہونے کے بعد سے اب تک جتنے کپڑے پہنے انہوں نے پہنایا, جتنی سواری میرے پاس ہے ان کی ہے, جو مکان لیا میرے پاس ہے وہ ان کا ہے, جو پلاٹ اور زمینیں ہیں وہ ان کی ہیں, شادی انہوں نے کرائی بیوی انہوں نے دی بچے انہوں نے دیے, کوئی رائٹ نہیں ان کا کوئی حق نہیں, یہ نہیں آ رہا مسلمان کے ذہن میں, تو جب ایمانیات کے مذاکرے ہوتے ہیں جب ایمانیات کے مذاکرے ہوتے ہیں اس سے ایمانی ماحول میں آدمی ہوتا ہے اللہ کی بڑائی اللہ کا حاضر ناظر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے ان کا جو سسٹم ہے وہ جانتا ہے آدمی اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی پیدا کیا بلکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بعد آتا اس پر نوٹس لیں گے جس کو جج کا دن دیتے ہیں جج فیصلہ کرنے کا دن بعد آپ کا ایک ایک عمل کو دیکھا جائے گا کہ پورا کیا کہ نہیں کیا اس نے, اسی وجہ سے مانتی ہوگی دن پڑھایا سنایا جاتا ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے جو طے کر لو لیکن بدلے کے دن کے تم مالک نہیں, اس کا ناپتا ہے اور اس کے اوپر رزلٹ اور نتیجہ مرتب کرنا ان کے ہاتھ میں ہے, تم کیا کرو گے مرضی نماز پڑھتے ہو کرو نہ پڑھتے ہو نہ کرو, حلال کھاتے ہو کھاؤ نہ کھاتے ہو نہ کھاؤ, حلال نہ پوری کرتے ہو کرو نہ کرتے ہو نہ کرو, ایمان سے رہتے تو رہو ایمانے میں جاتے ہو تو جوہر, لیکن جب اس کا رزلٹ سامنے آنے والا ہوگا تو تمہارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے, مالک کی یوم الدین کا یہ مطلب ہے ہمارا یوم الدین دوسری جگہ پر اللہ نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ یوم الدین کا میں مالک ہو کر کے روزانہ سنواتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے, ہمارا دوا کا ماں یوم الدین تم نہ ہمارا دوا کا ماں یوم الدین, تیز مطلب اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اس بات کو اچھا دھیان سے سنو کہ یوم الدین کیا ہے, پتا ہے تم کو یوم الاسم لی و نفسن لی نفسن شیئا والامر یومئذ للہ, وہ بولے رہے کہ کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا اختیار نہیں رہے گا اس کا, صرف صرف اللہ کے ہاتھ سے مانگ رہا ہے کرنے کو کر لو جو چاہے گا سمجھنے کو تو گزرنا پڑے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے نہ مانے تو مر گئے, ایمان پر محنت کیسے کرنی ہوتی ہے, اسی لیے عام محنتوں کے مقابلے میں ایک ایسی محنت جس میں آدمی کا مزاج اندر سے دل ہوتا ہو ایمانیات میں اس کی ضرورت ہے, بڑوں کو چھوٹوں کو جوانوں کو بوڑھوں کو مردوں کو عورتوں کو سب کو بچوں کو سب کو ضرورت ہے, کیوں اس بات سے کہ یہ کامن چیز تھی جو صحابہ میں پائی جاتی تھی, اور کرنے کی بات یہ کہ حضرت صحابہ کی تربیت کس لحاظ سے ہوئی تھی, क्या बात उनके कामन पाली जाती थी। जब मेरे को पता चलता है कि तो ईमान की कैफियत थी, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह जी का डर, अल्लाह जी से उम्मीद, अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत, अल्लाह के नबी से बेपनाह मोहब्बत, अल्लाह के अल्लाह और अल्लाह के नबी के मुकाबले में किसी चीज की परवाह नहीं, अल्लाह अल्लाह के नबी को खुश करने के वास्ते किसी मलामत करने वाले की मलामत का डर नहीं। कौन क्या बोलता है, कौन खुश होता है, कौन नाराज होता है, किसको हम पसंद आते हैं, किसको हम पसंद नहीं आते, कितनी हमारी अभी बाकी रहती है, किसमें नहीं रहती। आज से कुछ दिनों से बैठ होगी कभी, इन चीजों से बैठ नहीं होती ना, मतलब गौर चाहने वाले को इन चीजों से बैठ नहीं हुआ करती। वो तो ये देखता है कि मेरा महबूब जो है वो कुछ करके नहीं है, वो जिस हालत में खुले बस, तो वो बात पैदा करना है। आज मुसलमान ने वो बात दे रही, अल्लाह की बात से नजर नहीं रही, मखलूक का नजर हो गई, मखलूक कुछ हो जाए, इसके रात दीगी की कर लिया, उसके रात दीगी की जीजा 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 के जी रहे हैं लोग। और फिर होता यह है कि इसमें सुकून की रस्ते भी नहीं मिलता, इसलिए जब बहुत सी चीजों से आदमी अंधे से लड़ा चुका होता है तो फिर कोई ना कोई अंधे से लड़ा ही रहता है करके, उधर पता खड़ता इधर भी लड़ना, कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं वो नाराज ना, कितना वो खुश करोगे, किसको किसको आकर मनवा के लोग मिलोगे। इसलिए इस्लाम ने मुझे कहेगा दिया कि बस एक को मनाओ, वो एक कल्चर जिसे तू गिरा समझता है, हजार कल्चरों से देता है आदमी को नजर, कल्चर से मेरा ध्यान हो सकता है, कल्चर से मेरा कर लेती है, किसकी मर्जी को सामने रखकर चलना, अगर अल्लाह रसूल की मर्जी को सामने रखकर चलने का जज्बा आ गया कि मखलूक है वो खुद ही आप अपनी मर्जी आपके साथ ले आती है, आपको उसकी मर्जी के पीछे करना नहीं पड़ता है। शुरू में दुआ करने की कभी रहती है क्योंकि लोगों के मिजाज के मुआवज नहीं होती चीज, मगर हकीकत यह है कि आज हम हर खाजा ट्रेनिंग का नाम लेते हैं, आपकी गलती क्यों लेते हैं, हिंदू भी लेता है, मुस्लिम भी लेता है, मुसलमान तो लेते ही लेता है, गैर मुस्लिम लेता है, पूरे पूरे हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े अहदेदार वो सब चाहे ले लेती है, दूध ले लेके जाते रहते हैं, अगर आपका जीवन तैयार करने उनको तो चाहिए, अगर मुसलमानों से वोट नहीं जाता तो वहां जरूर किसी वजह से नहीं जाता हूँ, और उसके भी दिमाग में कि हर भाई यहाँ पे बरकत वाली सब्जी रही, एक अंग्रेज पहुंचा था हिंदुस्तान जिहाद के बाद से और राजा अंजेरी के मजार में भी चला गया, वापस आगे कहने लगा वहां के मुर्दे भी अजीब हैं, जिन लोगों को हुकूमत करते हैं, मैंने ऐसे मुर्दे हिंदुस्तान में देखे हैं, उसने जो कहा मुझे हमारे पास मुझे और ज्यादा मुर्दे होते भी मुझे लगा कि मैंने ऐसे मुर्दे देखे हैं जो जिंदों पर हुकूमत कर रहे हैं, क्यों ना करें, इसलिए कि उन्होंने अपने सामने जिसको रखा था वो दाद ऐसी है कि जिंदा रहे वो आदमी दुनिया में क्या न रहे, सबसे उलूम उसके मुकाखर कर दिए जाते हैं, दिल सुख जाते हैं उसके अंदर से, हम अबारी को सहारे समझता है आदमी, कुछ करने का जज्बा दे देता है आदमी, मुझे के पास चले जाओ, काबिल करीब के पास चले जाओ, जितने बड़े खुदबुद्दीन बख्तियार गाजी के बाद खुदबुद्दीन बख्तियार गाजी की जगह देखने के बाद हुजूर रहते हैं, वैसे भी ताली नहीं लगा है क्या उसने भी क्या करे उसने उनका भी वहां पर तो तकरीबन 1500 किलोमीटर से चप्पल उतार लेनी पड़ी है, मेरी जिंदगी में बहुत बचा गया हूँ, राशि जाओ कर मेरा मुस्लिमों के पास जाने का जाना ना रहता है। अब सिलसिला ये गाजी ये समझना कि अगर हम अल्लाह को राजी रखना अंदर सीखें तो फिर मखलूक कैसे खुश होगी, इस चक्कर में मत करो, फिर मखलूक कैसे खुश होगी है कि दुनिया जो आदमी चला जाए तब भी उसकी खुशी के जज्बात और उसको खुश करने के जज्बात लोगों ने मुतनासिब होते हैं, जज्बात लहरों की तरह उठते रहती है चीजों के अंदर, जिंदगी तो फिर जिंदगी होती असल कामयाब जिंदगी वही होती, तो ये भी मेहनत का वो दर्शन वो हिस्सा जिसमें ये ईमान की दुनिया में मजबूत हूँ, उसमें से एक चीज जिस पर मेहनत होती है वो ईमानियात है, अल्लाह रसूल पर ईमान, किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, तकदीर पर ईमान, मरने के बाद की जिंदगी पर ईमान, बाप बारे मौत पर जन्नत और जहन्नम पर ईमान, हमारा ईमान है, अकीदे में हम लोग कमजोर नहीं है, अकीदे में एक हालत बहमुगत की है कि मान तो लिया लेकिन बहन से मुसलत नहीं है मुझे, अकीदे में एक हालत इस्तेदार की होती है कि मान लिया और बिल्कुल आंखों के सामने है, तो कभी भी ये बात नहीं कही जाती कि हमारे अकीदे खराब, अकीदे संविधान के साथ है बुनियाद है, फिर उसके जानित है वो साथ में कभी कोई मुसलमान गड़बड़ नहीं करता, और करेगा वो ईमान की बॉडी से बाहर हो जाता है, वो वही ईमानी आते हैं जो हम ईमानी को पसंद में पड़ते हैं, हम तो मिलता है मलाई कभी नहीं वसूख नहीं वसूख नहीं वजह मेरा वजह नहीं बस बाप बादल मौत ये प्रकार की चीजें हैं, लेकिन इनमें एक कैफियत ऐसी होती है कि जिस वक्त ये चीज हमारे दर्द पर मुसलत नहीं होती तो उसमें हफरत गायब होती है, तो फिर उसमें दुनिया वादक हो जाती है, तो इसमें आखिरत याद नहीं रहती, अल्लाह को याद नहीं रहते, उनकी परवाह नहीं करता आदमी, खेल नहीं करता, राजी हो तो क्या नाराज हो तो क्या, मेरा अपना काम बने पहले। एक कैफियत इन्हीं अकीलों में इस तहदार से वो मुसलत हो जाता है आदमी के दिलो दिमाग पर, जैसे सहाबा पर था, जैसे ताबईन पर था, जैसे औलिया उम्मत पर था, जैसे उलमा अब्बानी पर था, जो खुदा को सत्य करने वाले कानून रखने वाले तो उन पर होता है, वो इस्तेहज़ार से कैफियत होती है कि अल्लाह राजी होकर नाराज ना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला को इसे खुश करने वाली अल्लाह के हबीब मुलाकात में ये प्यारा करने का है, बच्चे हबीब से राजी है और हबीब के अलावा से राजी है, वो किसी के अलावा देने नहीं चाहते, बल्कि वो तो चाहते हैं कि दुनिया अल्लाह की मोहब्बत में ये करके दिखाए कि वो अपने इरादों को और अपनी अदाओं को पड़ा करे उनके हबीब के अलावा से, वो असल ये देखना चाहते हैं, उन्हें पता है अपने हबीब और उन्हें पता है उनकी अदाएं। मेरे और आपके बदन का मैार उन्होंने बताया कि तुम अपनी तरफ से कोशिश करके साबित करो मेरे कुछ करने के लिए कि तुमने अपनी अदाएं खत्म कर दी, अपने मायका खत्म कर दी, अपने इरादे खत्म कर दिए, अपने जज्बात खत्म कर दिए, फिर मैं तुमसे मन पर जाऊंगी, जो वो चाहते हैं तो मेहनत की करनी पड़ती है। इसीलिए आप मेहनतों में दीन की और इस मेहनत में थोड़ा सा जो फर्क है वो हमें लेना चाहिए, जरूरत दूसरों की भी होती है, जब ये मजबूत होंगे तो फिर जो तकाजे आएंगे ना वो हम आसानी से ले लेंगे। और इबादत का जज्बा, मस्जिद में वक्त गुजारने की आदत, पाबंदी से नमाज की आदत, अल्लाह के की आदत, तिलावत की आदत, इबादत का एक शौक होता है बंदे पर कि मैं अल्लाह पाक को खुश करूं, फराइज के जरिए से भी और नवाफिल के जरिए से भी, इसी वजह से सूफिया के पास दो तरह के अल्लाह के कुर्ब होते हैं, कुर्ब फराइज और कुर्ब नवाफिल। कुर्ब नवाफिल का तुझे आग्रह कि अल्लाह ने फरमाया कि जब बंदा इसका ताल्लुक मेरा बढ़ाता है नवाफिल से तो मैं उसको अपना महबूब बना देता हूँ, जब मैं अपना महबूब बनाता हूँ तो उसके हाथ पैर और हाथ कान हो जाता हूँ, जब मैं अपना महबूब बनाता हूँ तो उसका चलना फिरना, उसका बोलना देखना सुनना वो मैं हो जाता हूँ, यानी बिल्कुल मेरी मर्जी के मुआफिक होता है, वो समझता बोलिए तो मैं चाहता हूँ, वो देखता बोलिए तो उसको उसका काम मेरा काम ही हो जाता है, इतनी ज्यादा नजदीकी अलाफा शादी हो जाती है। इमारत करो दूसरा रामदाल बनाया करते थे कि जैसे गाड़ी रोड पे चलती है गैराज में बनती है, ऐसे मुसलमान मस्जिद और मस्जिद वाले माहौल में बनता है और बाबा अभी चलता है, कारोबार में, डीलिंग में, मामलात में, माजरत में, बीवी बच्चों के साथ, बहन के साथ, औलाद के साथ, भाई बहनों के साथ में रोड पर हवा कर, ये है मुसलमान का चलना, अपना ही होना मुसलमान का ऐसे मुस्लिम, लेकिन बनेगा वो मस्जिद वाले माहौल में, अयोध्या के माहौल में, नेक माहौल में, नेक त्योहारों में, जैसे गाड़ी बनती है जगह पर है, चलती है जगह पर है, जितनी अच्छी बनेगी उतनी अच्छी चलेगी। अब केवल की उसके जगह से आपको पे करनी होती है, जो बनने का जमाना का होता है ये मस्जिद के इबादत का माहौल का और अयोध्या की दौलतों का होता है, और फिर उसके साथ अल्लाह की मर्जी आपको जानना, ये शौक हर मुसलमान में ये जज्बा आ जाए कि अल्लाह की मर्जी नहीं जाऊँ, अल्लाह किससे खुद होते हैं, और पूछ पूछ कर चलने का जज्बा आ जाए, खुद से डिसीजन लेने का ना आए, खुद से जन कायम करने का ऐसे ही होगा, हर दिन में कोई शक्ति नहीं है, मेरा ख्याल ये है ये ठीक है भाई, तेरा ख्याल कहाँ से आ गया दिन में, क्यों रहता है अपना ख्याल अल्लाह के वास्ते बनता, डर अल्लाह से कहीं बेरोजगार ना हो जाए, डर अल्लाह से कि कहीं ऐसी बात कहो कि मैंने तो अल्लाह को कोई करने के लिए किया, वहां जाने के बाद पता चला कि नहीं ये तो एक्सेप्टेड नहीं, हमने कबूल नहीं किया, हमारी मर्जी के मुआफी नहीं है, ये तो बड़ा दिक्कत है, तो जब खुले टीके की बात आती है तो क्या काम बनेगा, इसीलिए डर आ जाए नजर के अंदर जो मारे गए उनसे पूछते कि भाई इसमें सही क्या है गलत क्या, अपनी तरफ से थोड़ी सी एहतियात बने, सारे ग्राम फतवा देने में एहतियात करते थे, हालांकि इनमें के निपुण से होंगे, इसलिए इस मेहनत को आपसे इज्तिमा हो गया नहीं मतलब नहीं कि खत्म हो गए, मेहनत है इज्तिमा जनता तभी अच्छा एक अनुमान होता है, उसके पहले मेहनत करने के वास्ते, उसके बाद मेहनत करने के वास्ते, तो जो साथी खुदी में दिक्कत के रहते हैं वो भी, और जिन्होंने शिद्दत नहीं की उन्हें भी दरखास्त है कि थोड़ा ये साइज में भी आप सही दिया करें, इसमें अपनी रात को भी और अपने औलाद को भी और पूरी उम्र को इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा, तो जिन्होंने सुनने से नहीं पढ़े वो पढ़ लेंगे।